हमारे गुजराती में लिखा, जीवन ना रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए, रंग बदलते रहते हैं यहाँ, मौसम बदलती रहती है, ऋतु वर्षा विगत शरद ऋतु आई, यहाँ तो ऋतु ये बदलती ही रहती।
जीवन ना रंग बदलता जाए, ओ रंग बदल सुख अने दुख के पल पल मां पलटाए, रंग बदल
जाए। यही जीवन है, किसी ने लिखा है, शायद उसी का नाम ही है दुनिया, यहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है, शायद उसी का नाम ही है दुनिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है तो उधर एक जनाजा उठा जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है उधर एक जनाजा उठा जा रहा है, इधर वाह वाह है उधर ठंडी आ है, कोई रो रहा है कोई गा रहा है, शायद उसी का नाम ही है दुनिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यहां सबके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते, दशरथ के पिता के मनोरथ भी चूर चूर हो गए, राम जी के पिता के भी, तो हम जीव कौन गिनती में। इसलिए रामायण की कथा को याद रखें, जब भी विपत्ति का काल आए तो इस प्रसंग को याद करना, हम क्यों हम कौन, कितनी लंबी मनु के रूप में तपस्या दशरथ की, लेकिन उसके मनोरथ भी त्रेतायुग में विफल, तो हम क्या हा? और कबूल ही कर लो, यहाँ हमारी इच्छा के अनुकूल सब कभी पूरा नहीं होता, यहाँ सब ने अधूरा ही छोड़ा है, यहाँ कौन पूर्ण की व्यवस्था एक परमात्मा ही है और कहीं है। किसी ने लिखा है,
सुनते हैं कि मिलती है,
बड़ी प्यारी कविता है शब्द से, कवि ने बहुत दुख के साथ लिखा कि हमने सुना है कि इस दुनिया में किसी की दुआ मिल जाए तो सब मिल जाता है, ऐसा सुना है तो चलो प्रयोग करें।
सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ से, सुनते हैं कि मिलती है
यहाँ
हर एक बात दुआ से, तो एक रोज तुम्हें मांग के हम देखेंगे खुदा से, एक रोज तुम्हें मांग के हम देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ से, सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात
शेर सुनिए, बहुत प्यारा शेर है।
दुनिया भी मिली है गमे, दुनिया भी मिला है।
दुनिया भी मिली और साथ साथ दुनिया के दुख भी मिले, जो हमने कभी नहीं चाहा था वो सब मिल गया।
दुनिया भी मिली है गमे, दुनिया भी मिला है,
लेकिन
वो क्यों नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते, जिसे हमने मांगा था खुदा से, वो क्यों नहीं मिलते, जो हमने मांगा था खुदा से। सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ से, सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ।
चित्रित करना था चंद्र, हो गया राहु, हाँ? ऐसी विधि गति विपरीत। दशरथ जी गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे। कैकेयी तुम ये क्या कर रही, मैं कल कौशल्या को क्या कहूँगा, लोगों को क्या कहूँ, यहाँ सुबह होने की तैयारी है, पूरा नगर सज धज के तैयार होकर हाथ में फूलमालाएं लिए कैकेयी के भवन को घेर चुका है। अवधवासियों में स्पर्धा लगी है कि द्वार खुले और महाराज निकले तो पहली बधाई हम दे, लेकिन सूर्योदय हो गया फिर भी द्वार खुला नहीं, तो लोगों की भीड़ एक दूसरों को पूछने लगी कि क्या हुआ क्या। द्वार भीड़ सेवक सचिव कह ही उदित रवि, देखी अजहुन जागे अवधपति कारण कवन विषय। अभी महाराज नहीं जागे, अजहू नहीं जागे, क्योंकि महाराज नित्य तो चौथे प्रहर में जाग जाते हैं। आज हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज क्यों नहीं जागे। गाँव लोगों ने, नगरवासियों ने सुमंत को कहा, बाबा आप जाइए महाराज को जगाइए, अभी देर हो रही है, आज राम जी का राज तिलक है, हम कितने तैयार हैं। और सुमंत पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। मंथरा को सुमंत जी ने पूछा, महाराज कहाँ? बोले कोप भुवन में। कोप भुवन? जिन जिन लोगों ने मंथरा को पूछा सबको कोप भुवन मिला, सबको यही मार्गदर्शन मिला। वो गए कोप भुवन और कोप भुवन जाते ही वो हैरान हुए, महाराज धरती पर गिरे, मुकुट एक और गिरा, कई कई कठोर बनकर खड़ी है। सुमंत जी ने जय जीव कहकर महाराज को जगाया और कहा कि प्रभु आप ये कैसी हालत में देख रहा हूं। सुमंत को देखकर महाराज रोने लगे, सुमंत मैं आज तक सोच रहा था कि हम बहुत नसीबवान हैं, लेकिन सुमन मैंने गत जन्मों में बहुत पाप किया होगा, उसका फल मुझे मिल रहा। महाराज ऐसा मंगल मत बोले। सुमंत क्या बताऊं, मेरा कौशल्या का और अयोध्या का भाग्य फूट गया। महाराज ऐसा मत बोले, आज कितना पावन दिन है और आप ऐसी अमंगल बात करके, बात बताइए ना सुमंत क्या बताऊं, मेरी बाजी पलट गई। गिर पड़े, कुछ बोल नहीं पाए। सुमंत को बड़ा धक्का लगा, क्या करूं, कई कई खड़ी है। गए, माताजी मैं आपको पूछ सकता हूं अयोध्या के प्रधान के नाते, मुझे प्रजा को जवाब देना है, बताइए महीपति को क्या हुआ। ऊपर से कठोर, भीतर रोती हुई मां ने कहा, देखिए इरादा कितना दिव्य है, बात बिलक ढंग की कर रही है कि महाराज पूरी रात्रि राम राम रखते रहे, मुझे कोई हेतु नहीं बताया, राम का कोई महत्व का काम है, तुम ऐसा करो राम को यहां ले आइए। वरना ऐसा भी हो सकता है, हो सकता कि कई कई कहती दशरथ जी को, सुमंत को, कि महाराजा को ले जाइए कौशल्या जी के भवन में और वहां अपने बेटे को कह दे कि वनवासी हो जाओ, कई कई चाहती थी कौशल्या के घर से वनवास न हो, मेरे घर से वनवास। कल कई कौशल्या का महल बदनाम हो, वो ठीक नहीं। वो तो राम जननी है, वो तो राम देती है दुनिया को, राम को निकालती नहीं। मेरे भवन से हो जाए बदनाम, ताकि मेरे भवन की बदनामी हो जाए। यहां ले आई। और दूसरा भीतरी भाव है कि सोचा होगा कि वहीं से ही राम चला जाएगा तो मुझे पुनः कब दर्शन। राजकुमार के रूप में तो मैंने बहुत बार देखा है, एक बार वनवासी रूप में भी देख। सोचा तुम राम को यहां ले आओ। सुमंत समझ गए कारण कुछ भी हो लेकिन राम जी को यहां लाना अनिवार्य है। महाराज की तबीयत तभी ही सुधरेगी जब राम के दर्शन करेंगे। और बिल्कुल ठीक है, कई कई में काम दर्शन करने गए उसमें तो तबीयत बिगड़ी, राम दर्शन से ही निरोगीता आती, काम दर्शन में सब अस्वस्थ। सुमंत वापस लौटे, लोग गिर चुके। सुमंत बाबा बताइए क्या है। नेत्र सजल सुमंत के कहा आप चुप रहिए, मैं अभी कहने में काबिल नहीं, कुछ देर तक राह देखे प्रतीक्षा करे। सुमंत सीधे राम भवन, यहाँ कोई दास दासी नहीं आज राम के निवास पर, सबको छुट्टी है, सब नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा कि राम राजा हो रहे। राम जी पूजा में बैठे हैं और सीता जी ने खुद आकर द्वार खोला, जो कुछ समय के बाद अयोध्या की पाठ महिषी बनने वाली। लेकिन जानकी ने जब सुमंत को देखा, इतनी मर्यादा से प्रणाम करती है वैदेही सुमंत को, मानो अपने पिता जनक को प्रणाम कर रही। जब सीता ने मर्यादा से प्रणाम किया तब सुमंत के नेत्र में आंसू आ गया। धन्य बेटी तरी, रघुकुल पुत्र वधु, बेटी तेरा सुहाग अमर। बाबा आप उदास क्यों हैं? आर्य पुत्र कहाँ है बेटी? अभी बुलाती हूँ बाबा, आप बैठिए। राम जी को बुलाए गए, भगवान सुमंत बाबा आए हैं। एकदम दौड़े भगवान पूजा के वस्त्र में प्रणाम किया। हाँ राघव पिताजी याद कर रहे हैं, चलिए। हाँ मैं आऊँ, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि सबकी तबीयत तो ठीक है ना? राघव चिंता का कोई सवाल नहीं, लेकिन विलंब मत करे, चले। राम भद्र खड़े हुए, तैयार हुए, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, पूजा के वस्त्र में ही भगवान निकल पड़े। क्योंकि भगवान ने सोचा होगा कि पूजा के कपड़े उतार दूं और राज के कपड़े पहन लूं और बाद में वो उतार कर वलकल पहनना पड़े, इसलिए अच्छा है पूजा का उतार कर सीधा ही वलकल पहन लिया जाए। वो तो अंतर्यामी। सीता जी को वहां रखकर राम जी आए हैं, लोगों ने देखा कि कुछ हुआ है, कोई बताता नहीं। देर से महाराज का जागना, सुमंत का वापस लौटना, राम को इस तरह ले जाना, सबके मन में संदेह बैठ गया है कुछ हुआ है। पहुंचे भवन, राम और सुमंत जब कई कई को भवन में गए तो महाराज गिरे हैं जमीन पर मूर्छित। बाबा जी लिखते हैं राम जी ने पहली बार दुख देखा, उससे पहले कभी दुख सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। प्रणाम करते हुए प्रभु ने पूछा पिताजी क्या बात, क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई? चार भाइयों से हमने वचन तोड़ दिया कहीं? रघुकुल की मर्यादा भूल से कहीं हमसे टूट गई क्या? बताइए ना क्या है। राम का हाथ पकड़कर दशरथ जी रोने लगे। भगवान सुमंत को पूछने लगे, सुमंत जी आप बताइए ना पिताजी को क्या हुआ। मैं भरत लखन शत्रुघ्न चार पुत्र हो और हमारे वृद्ध पिता को रोना पड़े वो हमारे लिए शर्म की बात है, बताइए। सुमंत ने कहा राघव एक ही बात कहूंगा, क्यों? रघुकुल की सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका, लेकिन मेरे जीवन में मैंने महाराजा दशरथ जी को इतना दुखी कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता राघव, पिता कह नहीं सकते, सुमंत अनभिज्ञ। राम जी ने देखा माँ को और दौड़े कई कई अम्बा के पास। माँ मोही कहूँ, माँ तू तात दुख कारण, मेरे पिता के दुख का कारण बताओ, मैं तुरंत निवारण कर दूँ, जल्दी बता। कई कई माँ राम के पास खड़ी है और कहने लगी बेटा और कोई कारण नहीं, तेरे पिता को तुझ पर बहुत स्नेह, वो तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ सकते। मुझे वचन दिया तो मैंने दो वरदान मांगा, क्या भरत को शासन और तेरा 14 साल का वनवास। भरत को शासन? हाँ बेटे, राम जी माँ को भेट चुके हैं, सच माँ नेत्र हरे हो गए। माँ बालक का हित माँ के बिना कौन कर सकता। तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मेरा भरत गाड़ीपति बनेगा, मेरी मांडवी अयोध्या की महारानी बनेगा, उससे ज्यादा हमारे लिए कौन सा सुख हो सकता। और मैं बन जाऊं और वो भी 14 साल, इतनी छोटी सी बात में मेरे पिता को इतना दूं। तुम भी कुछ छुपा रही हैं, बता ना। बोले इससे उसके सिवा कुछ नहीं, बस यही, वो कह नहीं सकते, संकट में पड़े। माता ने जब बात बताई, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि क्या बताएं। पहली बार जीवन में भगवान कैकेयी को जननी कहते हैं। आज तक कैकेयी को माँ कहते थे, लेकिन अब शब्द पलट दिया, जननी कह दिया, क्योंकि साहित्यिक दोष है। कोई भी उम्र वाली माता को हम माता कह सकते हैं, जनेता नहीं कह सकते, साहित्यिक दोष। जनेता हम उसी को ही कहते हैं जो हमारी प्रसूता हुआ करती है, जननी। तो राम की जननी कौशल्या है, उसने उसको जन्म दिया। तो कौशल्या को जननी कहे तो ठीक, कैकेयी को जननी क्यों? उसको माता कहे, अभी कहा ने वही कहो मातु तात दुख कारण। लेकिन वनवास की बात जब सुनी तो तुरंत शब्द पलट दिया और कहा कि माँ सुन, बाबा जी लिखते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुमातु बचन अनुरागी, जो तुमातु बचन। माँ जननी इसलिए कई महात्माओं ने अर्थ निकाले हैं कि माँ आज से मैं तुम्हें जननी कहता हूँ, क्यों? कि तुमने तेरे बेटे के लिए टीका मांगकर पराया बना दिया और मुझे अपना बेटा बना ले। धन्य हो, खुद के बेटे को टीका दिला दी, आलोचना दिला दी, निंदा दिला दी, और कौशल्या के बेटे को आज अपना मानकर मुझे कितना यश दिलाए जा रहे। तुम मेरी जननी हो। दूसरा अर्थ, कौशल्या माँ ने रघुवंश के राम को जन्म दिया। वन में नहीं जाता ना माँ तो दुनिया को रघुवंश का राम मिलता, राम राज्य का राम नहीं मिलता। तुमने वनवास देकर राम राज्य के राम का जन्म किया है, इसलिए आज से एक दूसरा राम पैदा हुआ है, तुम मेरी जननी हो। तीन बार जननी शब्द है यह। गोस्वामी जी का ये रिवाज रहा, कोई बात बहुत पक्की करनी है ना तो 3 बार शब्द का प्रयोग करते। ये व्यवहार कर, एक बार दो बार 3 बार कह देते हैं तो बात पूरी हो जाती है। तो कहीं भी बहुत मक्कम बात करनी है तो 3 बार कहेंगे तुमसे, सत्य सत्य पन सत्य घमा। एक प्रसंग में सत्य 3 बार कहा। कहत कठिन साधन कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। विवेक की व्याख्या जब उत्तरकांड में की तो 3 बार कठिन शब्द का प्रयोग, क्योंकि दृढ़ करना। और अंत में आप सुनिए, तर ही नबीनु से ये माम स्वामी राम नमामी नमामी नमामी, तर ही नबीनु से ये माम स्वामी राम नमामी नमामी नमामी, जी राम नमामी नमामी नमामी, राम नमामी नमामी नमामी। तो यहाँ 3 बार शब्द का प्रयोग है जननी का। पहले कहा कि हे जननी, वो बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन का अनुरागी है। तनय मात पितु तोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता को संतोष देने वाला बेटा तो इस संसार में दुर्लभ हुआ करता है। मैं बन जाऊंगा तो कितने फायदे हो जाएंगे पता है माँ? तुमने मेरा कितना हित कर दिया। मुनि जन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मूर। मुनियों का मिलन होगा मैं तप कर सकूंगा मन में, सब तरह से मेरा रहित होगा, और उससे ज्यादा फायदा तो मेरे लिए है कि तेहि मह पितु आयसु बहुरी, मेरे पिता का वचन निभ जाएगा जो तुम्हारे पिता को दिया था। वो वचन निभ जाएगा कि भरत को ही गादी मिले, वो वचन निभेगा, और यहाँ भी वचन की आपको दिया वो भी वचन निभ जाएगा। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तो, जिसमें तेरी सम्मति है ये कार्य पूरा होगा। और इतने फायदे मुझे हो रहे हैं, लेकिन मां क्या बताऊं, इन सब फायदे से सबसे श्रेष्ठ लाभ तो मुझे ये होगा। ये सबसे श्रेष्ठ लाभ जब राम बताने गए ना, तब प्रभु के नेत्र में आंसू आ गए। कई कई ने पूछा क्या है, बोले हाँ मां सबसे श्रेष्ठ लाभ ये होगा क्या कि भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, मारो प्राण भरत युद्ध, मेरा जो प्राण है भरत वो अवध का मालिक बनेगा, वो राज्य पाएगा। मुझे लगता है मेरा विधाता दाहिना हो गया, अब मैं क्या बताऊं, इतने फायदे के बाद यदि मैं बन न जाऊं तो मुझे एक नंबर का मूड कहना, प्रथम गनीय वही मूड समाज, तुमने मेरे लिए ठीक कर दिया। लेकिन मेरे दिल में बात ये नहीं बैठती अभी तक कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा दुख। बोले इससे ज्यादा कुछ नहीं तुम कर। बाबा जी वर्णन करते हैं, राम जी माँ की बात सुनकर पिताजी के पास गए और कहा कि मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अभी मेरी माँ कौशल्या के आशीर्वाद लेकर बन की तैयारी करता हूँ। राम और सचिव पुत्र दोनों निकल पड़े हैं कौशल्या के भवन से, और जैसे कई कई के भवन से कौशल्या के भवन की ओर। बाबा जी का मत है राम का बाहर आना और उसी के साथ कई कई को भवन की बात पूरे नगर में जाहिर हो गई कि कई कई ने राम को वनवास दे दिया। लोग सरपटकने लगे, कई कई ने ये क्या कर, दीप बुझे, रंगोलियां भूसाने लगी, तोरण टूटने लगे, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगे, वृद्ध गिरने लगे, राम बन जाएंगे, कई कई तूने ये क्या कर दिया। बहुत रोए लोग, पूरी धारणा विफल हो गई लोगों की, स्वाभाविक था राम के प्रति लोगों का इतना आदर था। लोग बहुत रो रहे हैं, कई कई को समझाने की कोशिश की गई ऋषि पत्नियों के माध्यम से, लेकिन असफल। और यहाँ राम और सचिव पुत्र कौशल्या के घर पहुँचे, बाबा जी कहते, बाबा जी ने लिखा है, माता जी के पास आकर तुलसी जी कहते, रघु रघु कुल तिलक जोड़ी तुम्हारा, रघुकुल तिलक जोड़ी। राम जी आए माँ कौशल्या के, मुदित मातु पद नाए माथा, मुदित मातु पद नाए माँ, मुदित मातु पद नाए माथा, रघुकुल तिलक जोड़ी तुम्हारा। आज जोर कर भगवान खड़े रहे माँ के सामने, माँ क्या करने लगी, बाबा जी लिखते हैं माँ ने क्या किया,
बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता, रघुकुल तिलक जोड़ी तुम्हारा, मुदित मातु पद नाए माथा,
माँ मुख चूमने लगी राघव का और प्यार से कहने लगी, बेटे इतनी देर हो गई अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, गुरुदेव मुझे डांटेंगे कि आज शुभ दिन पर तुमने राम को ठीक समय पर तैयार नहीं किया, तेरे पिताजी प्रतीक्षा करते होंगे। चलो जल्दी करो, माँ है ना, कुछ खा लो, जल्दी करो, कपड़े बदल लो, मैंने पूरी रात्रि जाग कर तेरे लिए राज पोशाक तैयार किया है, क्योंकि आज मेरा बेटा राजा होने वाला है। भगवान नीचे झुक कर सर झुकाए सुन रहे, सोचने लगे कि मैं इस ममता मूर्ति को कैसे समझाऊं कि मैं बन जा रहा हूं, कैसे समझाऊं। माँ बोलने लगी, मैंने ये सब तैयार किया है, ये करो ये करो, चार पांच बार कहा, फिर भी राम जी कुछ बोले नहीं। तो माँ को आशंका हो गई और पूछा कि तुम चुप क्यों राधव, बोलिए। बार बार पूछा तो राम जी ने कहा, माँ तुम सह सको तो मैं बताऊं, तुम राम जननी हो, धैर्य रखोगी, बोलो क्या बात है। तो सुनो, मेरे पिता ने वचन दिया ना कि राम को राज्य मिले, हाँ तो मेरे पिता ने वचन निभाया, देखिए पिता का कितना बचाव कर रहे हैं। मेरे पिता ने वचन निभा लिया तो कौशल्या जी ने हंसकर कहा कि निभाना ही चाहिए, ये तो रघुकुल है, इसमें तुम को कौन सी नई बात कर रहे हैं, निभाना ही चाहिए। नहीं माँ सुन, मेरे पिता ने राज देने की बात कही थी, वो निभा लिया। बोले कैसे, पिता दीन हमोही कानन राजू, पिता दीन मोही, मेरे पिताजी ने मुझे बन का राज्य दे दिया और हमारा राज अवध के सीमाओं में सीमित थोड़ा, वो तो दूर सुदूर लगा हुआ, एक भाई यहाँ राज करेगा, मैं बन में जाकर, बन को भगवान ने राज माना, पिता का बचाव कर लिया, मुझे पिताजी ने राज दे दिया, वचन निभाया है, 14 साल कल पूरी हो जाएगी, वापस आऊंगा, तेरे चरण में प्रणाम करूंगा, कितने अनुभव लेकर आऊंगा, तेरा बड़ा कितना अनुभव लेकर आ सकेगा, मुझे आशीर्वाद दो। वनवास, आप सोचिए माँ की क्या हालत हुई, एक क्षण के लिए राम का हाथ छोड़ दिया, और कोई आज कौशल्या को देखे तो लगे कि कौशल्या नहीं, भवन में कौशल्या की पत्थर की मूर्ति खड़ी है, ऐसी अवाक हो गई। माँ मैंने पहले कहा तुम धीरज रखो, तुम राम जननी हो। कौशल्या पूछने लगी कि तेरे पिता कभी वनवास नहीं दे सकते, उसके पीछे कोई और कारण है, बता कौन है। भगवान ने इशारा किया सचिव के पुत्र को, और राम रुख देखकर सचिव के बेटे ने कौशल्या को सब कैकेयी भवन की बात से अवगत कराया कि ऐसा हुआ, और कैकेयी माँ ने वचन मांगा और महाराज वचनबद्ध हो गए, राम को वनवास भरत की गादी, तब एक शब्द नहीं बोल पाई, देखिए राम जननी रोने लगी। भगवान ने कहा माँ, बोले हाँ बेटे, अब एक और धर्म है, एक और स्नेह है, धर्म कहता है वचन निभाना चाहिए, और स्नेह कहता है कि तेरा बेटा चला जाएगा तो तू क्या करेगी, मेरी बुद्धि आज मुश्किल में है। लेकिन रोती हुई माँ ने कह दिया कि बेटा केवल तेरे पिता की ही आज्ञा होती ना तो मैं समझा बुझा कर इसमें परिवर्तन करा सकती, लेकिन अपनी माँ कैकेयी ने भी जो कहा हो कि बन जाओ, तो माँ तो बेटे का कल्याण ही करती है, बेटे तेरे हित के लिए ही होगा, जाओ बेटे बन, देखिए समर्पण। दूसरी माता होती तो ये कहती कि मेरे बेटे को बन देने का क्या अधिकार, लेकिन स्पष्ट कहा है, तो पी तू मातू कहे बन जाना, जो पी तू मातू कहे जो पी तू मातू कहे सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पी तू मातू कहे वो बन जाना, माता पिता दोनों ने यदि बन जाने को कहा है तो एक अयोध्या की तरह नहीं, वनवास तुम्हें 100 अवध का सुख दो, जाओ आज्ञा दे आशीर्वाद। लेकिन आखिर में माँ है ना, बाद में भवन के एक खंभ को पकड़कर रोने लगी, माँ बोले हाँ बेटा, बड़ भागी बन अवध भागी, बड़ भागी बन अवध बड़ भागी बन अवध भागी।
तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़े भागी बन अवध अभागी,
बन ने बहुत तप किया, वो बड़े भागी है मेरी अवध अभागी है जो आज राम को छोड़ रही। अब कब मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कहूंगी मेरे लाल रघुवर कब बुलाऊं। पर माँ जब रोने लगी ना तो प्रभु पूछ रहे माँ मत रो। कौशल्या जी ने कहा माँ बेटे जाना हो तो जाओ लेकिन एक जवाब देते जाओ, क्या? कि मुझे मेरी पुत्र वधु पर पूरा यकीन है, सीता तेरे विरह में कभी जान की कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन आखिर में महिला है बेटे, तेरे विरह में कोई संध्या के समय मेरे राजभवन के कोई कोने में वैदेही बैठी होगी और मैं उसको जाकर पूछूंगी जानकी बेटी क्या है बेटा, तब आंसू गिराकर वो मुझे पूछेगी माँ 14 साल में अभी कितनी साल बाकी है, तब मैं उसको क्या जवाब दूँ। और जानकी साथ भी नहीं चल सकती क्योंकि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। इतने में सीता जी दौड़ आती हैं। सीता को घर रखने के लिए राम जी ने बहुत उपाय किए लेकिन जानकी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी होती तो आप मुझे बिलक कर सकते हैं, मैं तो आपकी प्रति छाया हूं, छाया को देह से बिलक की जाए तो कर दो, और आप मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो ये बात कल जनकपुर पहुँचेगी और मेरे माता पिता रो रो कर कहेंगे कि मेरी बेटी ने संस्कार को उजागर नहीं किया, आप मुझे साथ ले चलो, मैं वचन देती हूँ मैं सुख को याद नहीं करूँगी, दुख की फरियाद नहीं करूँगी, आपके पैर पैर चलकर मैं अपने जीवन को कृतकृत्य मानूंगी और मैं घर रहूंगी तो मेरा नाम लेकर समाज की स्त्रियां पातिव्रत धर्म छोड़ देगी, समाज अधर्ममय हो जाएगी। भगवान ने सोचा सीता प्राण छोड़ेगी हठ रखेगी, कहा चलो सादे कपड़े पहन लो। सीता जी दौड़ी है कपड़े बदलती हैं और यहाँ लखन को समाचार मिला, वो दौड़ता आया, मेरे लिए क्या हुक्म होगा, मुझे घर रखेंगे या ले जाएंगे? बाबा जी कहते हैं माँ और राघव के चरण में वंदन करके खड़े हैं, सब तोड़कर आए हैं सब रिश्ते तिनके की तरह। भगवान ने लखन जी को समझाने की कोशिश की तुम घर रहो सबको संभालो, लखन जी ने कहा महाराज क्षमा करें, नीति और धर्म का उपदेश उसको देना चाहिए जिसको लोक में कीर्ति और परलोक में मुक्ति चाहिए, मुझे लोक में कीर्ति भी नहीं चाहिए और परलोक में मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण की सेवा चाहिए, मैं नहीं जी सकूंगा, आप मुझे अवध में छोड़कर जाओगे तो सरयू के तट तक आकर मैं सरयू जल में डूबकर अपने प्राण को छोड़ूंगा। भगवान को अच्छा नहीं, लखन ऐसा मत बोले, जाओ माँ सुमित्रा की विदा ले आओ। लखन आए सुमित्रा के पास, सुमित्रा माँ को अभी पता ही नहीं कि क्या हुआ, लखन जी ने आकर प्रणाम किया, सुमित्रा ने पूछा लखन कब राज्यारोहण की सवारी निकलने वाली है, बाजिंत्र बजते बंद क्यों हो गए? माँ तुम बहुत बोली हो, पता नहीं राम को वनवास हो गया, वैदेही साथ जा रही है, मैं तेरे पास आया हूँ, बोल मुझे क्या हुक्म है? राम वनवास, चुप हो गए। लेकिन अद्भुत पात्र है सुमित्र, एकदम हाथ पकड़ लिया लखन का और बहुत सुंदर बोले कि लखन सीताराम जी वन में जाए तो तुम मुझे पूछने क्यों आए? तेरी माँ तो वैदेही है और पिता राम है। तेरी अवध तो वहां है जहां राम हो, जहां सूर्य हो वहां ही दिन है, मैं तेरी माँ थोड़ी। सीताराम जाते हैं तो अवध में तेरा कोई काम नहीं, जाओ। पुत्र वाली माँ ये है जिसका बेटा रघुवर का भक्त हो। और ध्यान रखना लखन, सपने में भी राग रोष ईर्षा मद मोह के अधीन मत होना। भगवत सेवा करने में इतना डूबना कि सपने में भी ये दुर्गुण तेरे मन में ना आने चाहिए। लखन जी कांप गए, माँ के चरण पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा कर ली कि माँ यदि मैं सो जाऊं, सपना आ जाए और सपने में दुर्गुण आ जाए तो तेरी बात मैंने मानी नहीं, ऐसा कहा जाएगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं। सोऊं तो सपना आएगा ना, सपना आए तो दुर्गुण आएगा। जागृति का उसने संकल्प कर लिया, तरकस बांध दिया, धनुष बाण दे दिया और लखन माँ के चरण में वंदन करके प्रभु कार्य के भगवान की सेवा के लिए निकलता है। सुमित्रा जी आशीर्वाद देकर विदा करती है, तेरी राम भक्ति सफल हो। लेकिन हमने संतों से सुना है लखन जी जब जा रहे हैं ना, आखिर में माँ है ना, तो महल का खंभा पकड़कर खड़ी है। लखन जी ने मुड़कर देखा तो सुमित्रा जी की आंख में आंसू पाए। गोस्वामी जी नहीं लिखते, संतों से सुना, आखिर में माँ। लखन जी एक क्षण के लिए रुक गए, माँ धैर्य मत गवाना, तुम मेरी माँ। लखन जाओ, अब अवध का क्या होगा हम अंदाजा नहीं कर सकते। तेरी राम भक्ति सफल हो। लखन जी निकल जाते हैं। उर्मिला को मिले या नहीं मिले, वो कहीं मिला नहीं, इसलिए लोग आक्षेप करते हैं कि उर्मिला को उसको मिलना चाहिए, उर्मिला को साथ क्यों न ले गए वगैरह। लखन जी के समर्पण में इतनी तीव्रता है कि वो उर्मिला के मिलने के लिए कहां से जा रहा है, इतने तीव्र त्यागी है। हमने तो सुना है कि वो उर्मिला को मिले और उर्मिला ने बात सुन ली थी, आपने कथा सुनी होगी। उर्मिला की एक दासी का नाम था प्रवीणा। उर्मिला चित्र काम में बड़ी पारंगत महिला थी, लखन की पत्नी। वो चित्र बना रही थी राम राज तिलक का, क्योंकि प्रवीणा ने उसको कहा था कि राज तिलक की बात, तो वो चित्र बना रही थी। वो चाहती थी कि सीताराम गादी पर बैठे, वो चित्र बनाकर मैं जनकपुर भेजूंगी तो मेरे माता पिता कितने खुश होंगे। और यहाँ अचानक खबर आया कि लखन जी ने आकर बताया कि उर्मिले और पति को मिलने के लिए एकदम जल्दी में उसकी पीछे रंग की चित्र के ऊपर इधर उधर घूम गई, चित्र बिगड़ गया और आंख में आंसू आ गए। उर्मिला को लखन जी ने कहा आंख में आंसू, बोले प्रभु मैं राज्यारोहण की तस्वीर चित्र बना रही थी, आपने तुरंत बुलाया ना तो मुझे आवेश में ख्याल नहीं रहा तो चित्र बिगड़ गया। लखन चुप हो गए, बोले कैसे आप चुप क्यों हैं? बोले योग्य समय पर चित्र बिगड़ा है, तेरा कागज का चित्र भी बिगड़ा और अयोध्या का वास्तविक चित्र भी बिगड़ चुका। सीताराम जी बन जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं सब माता की पिता की सेवा करना। एक शब्द उर्मिला ने हमने ऐसा सुना है, वो खड़ी रही। वो चाहती थी कि मुझे साथ न ले, लेकिन कम से कम इतनी आज्ञा करें कि चलो मेरे साथ एक बार हम दोनों प्रभु के चरण में वंदन करें, इतना कहे तो बस। लेकिन लखन ने नहीं कहा कि तुम आओ वहां तक, और ये भी नहीं कहा कि भीतर चले जाओ। आंगन में जहां खड़ी थी वहां खड़ी रही। बुद्धि नहीं पकड़ेगी और हर चीज बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती, कहीं तो तुम्हें अंतःकरण की श्रद्धा लगानी पड़ेगी। उर्मिला खड़ी रही 14 साल तक खड़ी रही। 14 साल के बाद जब लखन आए और मानो हाड़ पिंजर खड़ा था, तब उसके जीवन में मानो एक एक पात्र की कुर्बानी अद्भुत। अथवा तो उर्मिला को साथ नहीं ले गए, क्यों? कि उर्मिला को वनवास साथ लेना ठीक नहीं। सीता वनवास सह सकती है, उर्मिला नहीं सह सकेगी, लखन को पता था। क्यों? कि सीता धरती की बेटी है, उर्मिला जनक की बेटी है। धरती की बेटी धरती जैसा धैर्य रख सकती है, उसमें सहनशीलता है, लेकिन उर्मिला जनक की पुत्री वो इतना धैर्य नहीं रख पाएगी, यानी सह नहीं सकेगी, बोलेगी नहीं लेकिन सहेगी। अथवा तो उर्मिला ने भी नहीं कहा कि मुझे साथ ले लो, क्यों? कि उर्मिला समझती थी मेरा पति रक्षक है, प्रभु के संरक्षण के लिए जा रहा है। आज कलयुग की महिला भी अपना पति सैन्य में हो और सैनिक सरहद पर जा रहा हो तो आज की कलयुग की पत्नी भी कभी नहीं कहती कि मुझे साथ ले चलो, तो क्या त्रेता युग की हमारी उर्मिला बोलेगी कभी? आज भी इतना विवेक है कि सैनिक के साथ पत्नी कैसी जा सकती? राम तो राजा बनकर गए हैं, पिता दिन हम वही कानन राजू, और जहां राजा होता है वहां रानी भी होती है, इसलिए सीता जी को साथ ले गया उचित है, लेकिन लखन कैसे ले जाए, सर सेनापति पत्नी को सरहद पर कैसे ले जाए, वो सैद्धांतिक रूप में भी गलत है। इसलिए यहाँ ये निर्णय बिल्कुल प्यारा निर्णय है कि उर्मिला को नहीं कहा गया, और उर्मिला भी समझ गई कि सेनापति की पत्नी जो ठहरी, मुझे घर में रहकर तप करना चाहिए। और मैंने आगे भी कहा था वो कैकेयी माँ की दासी बनकर रही है, और यहाँ लखन जी ऐसे निकल चुके। तीनों कौशल्या के भवन में माँ को प्रणाम किया, माँ बहुत दुखी हैं, और तीनों प्रणाम करके माँ को ऐसे ही छोड़कर निकल पड़े हैं। आए कैकेयी भवन, पिताजी ने तीनों को देखा और दशरथ जी रोने पड़े, जानकी बेटी तुम भी जा रही हो, बेटी हमने गुनाह जरूर किया है लेकिन इतना बड़ा दंड मत दो, इतनी बड़ी सजा मत दो, तुम्हें अवध में अच्छा न लगे ना बेटी तो मेरठ में बिठा कर जनकपुर छोड़ ले आऊंगा, वहां नहीं अच्छा लगे तो यहाँ ले आऊंगा, लेकिन तुम जाओगी तो मेरे राज्य की लक्ष्मी चली जाएगी, तुम मेरे कुल का गौरव। पिताजी को पातिवृत्य की बात कही, लखन जी को कहा, लखन तो बड़े उग्र है, राम जी समझाने लगे। इतने में कई कई कठोर बनकर, कठोर तो है ही नहीं, मैं कैसे उसको कठोर कहूं, कठोर होने का उसका पूरा नाटक है। यहाँ जो बोली है ऊपर की दृष्टि से लोगों को कठोर लगता है, एकदम बीच में आकर कैकेयी माँ बोली, राघव विलंब मत करो, ये मुनि के वस्त्र पहन लो और यहाँ के वस्त्र निकाल दो और वनवास की तैयारी करो, जल्दी चलिए, वैसे कठोर वाक्य लगता है, लेकिन कैकेयी को डर लगा कि जल्दी नहीं करेंगे और शायद महाराज को कुछ हो गया, वनवास हो चुका ऐसा मानकर उसका प्राण चला गया, मान लो कि राम चले गए मूर्छित अवस्था में बांध नहीं रही और मर जाए तो राम को वन में जाना या क्रिया के लिए घर रहना क्या करना, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए कहा तुरंत कर रहा। राम भी माँ के गर्भित शब्द को समझ गए और तुरंत मुनिपट सब पहन लिए, और जिस दिन शरीर के ऊपर राज के पोशाक पहनाने जाने वाला था वहाँ वलकल पहनाए गए, यही का नाम मानव जीवन है। तीनों सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत तीनों निकल रहे हैं, और पिता मूर्छित सुमंत दुखी, माँ भीतर से बहुत रोई होगी, तीनों निकल गए हैं। राजमार्ग पर आए, पूरी अवध रो रही है, सरयू के तट पर पहुंचते हैं, पूरी अयोध्या पीछे। वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, बाबा सब ब्राह्मणों को वर्षासन दे देना, मेरे माता पिता का ख्याल करना, और बाबा एक काम खास करना, प्रार्थना, क्या भरत आए ना तो धाम-धूम से राज तिलक करना, और बाबा हो सके तो एक प्रार्थना, भरत का राज तिलक जब करो ना समय रहे तो कोई दूत के द्वारा हमें वन में खबर दिला देना कि आज भरत का राज तिलक है। क्या तो बात क्या है? बोले बाबा हमको समय पर समाचार मिलेगा ना तो मैं जानकी और लखन बीलों के साथ हमारी कुटियों को तोरण लगाकर भरत के राज तिलक का उत्सव मनाएंगे, उस बात की हमको जानकारी भेजना। भरत की जब भी याद आ जाती प्रभु को भगवान के आंख भर जाते, इतना प्यारा पात्र रहा श्री भरत जी भगवान के लिए। प्रजाजनों को समझाया कौन माने, यहाँ सुमंत जी को दशरथ जी ने कहा रथ लेकर जाओ, कुछ दिन वन में वन दिखाकर वापस ले आना, मैं इस प्रतीक्षा में हूँ कि तीनों में से कोई तो आएगा। सुमंत रथ लेकर आए और कहा कि रथ में बैठ जाए, भगवान समझ गए कि यहाँ से रथ का उपयोग करना अति आवश्यक है क्योंकि लोग जाने नहीं देंगे। तीनों रथ में बैठ गए और जब रथ चला तब हाहाकार मच गया। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, सब नर लोग नर नारी रो रहे हैं, कोई रथ के आगे गिर जाते हैं, कोई कुछ होता है। बाबा जी समझाते रहे, अति वृद्ध अति बीमार बिल्कुल छोटे बच्चे वो रह गए, बाकी की अयोध्या भगवान के पीछे पीछे। तमसा नदी के तट पर पहुंचते ही शाम हो गई और भगवान ने सुमंत को कहा कि प्रथम रात्रि मुकाम यहाँ कर दिया जाए। तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ, भगवान समाज के साथ तमसा के तट पर आ गए। आगे की कथा ठीक 2 बजे हम आगे करेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राम चंद्र श्री बाल कृष्ण लाल सदगुरु देव, ओ नमः पार्वती पतये।
विठल विठल विठला जय जय
विठल विठल विठला
जय जय विठल विठल विठला जय जय सब गाइए
विठल विठला
माझा विठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा
विठ्ठल
हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा
हो माझा विठ्ठल
जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
सब गाइए। गुजरात को भूलकर महाराष्ट्र को याद कीजिए, तुकाराम को याद करके गाइए भाव से। माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठला
माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठल विठल विठला माता विठल पांडुरंगा हो माता विठल जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठला जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा माझा विठल पांडुरंगा हो जय जय विठल विठल विठला जय जय विठल विठल विठला माझा विठल पांडुरंगा माझा विठल पांडुरंगा हो विठल पांडुरंगा हो माझा विठल गोविंद गोविंद गाय जा बढ़ाए जा और पंथ
तेरा बढ़ाए जा
और पंथ तेरा बढ़ाए जा और
पंथ तेरा बढ़ाए जा
गोविंद गोविंद गाए जा
सब गाइए एक बार अपील कहीं भी आप बैठे हैं जहां तक आपको लाउड स्पीकर से आवाज सुनाई दे सब गाय अने तुम्हारे तो खास गाऊ जोईए आ ओंकारनाथ ठाकुर नी भूमि छे जिसने संगीत की बड़ी अद्भुत साधना से चार चांद लगा दिया संगीत की दुनिया में उसी की ये प्रदेश उसी का है ओंकारनाथ पंडित का इसलिए तुम्हें तो गाना चाहिए गोविंद 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 गोविंद
और
इतना सुंदर गा लेते हो फिर भी क्यों नहीं गाते इतना प्यारा गाते हो तुम बहुत भाव से गाइयो
गाए जा
खुदा ही मिलने आएगा वो,
खुदा ही मिलने आएगा,
खुदा ही मिलने आएगा वो,
खुदा ही मिलने आएगा,
ओ खुदा ही मिलने आएगा, को बढ़ाए जा तू, बंदगी को बढ़ाए जा तू, बंदगी को बढ़ाए जा तू, बंदगी को बढ़ाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद 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 गोपाला, गोविंद 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 गोपाला,
सब गाइए।